نہیں ہے چھپ کے دے کے آتی کہ پتہ نہ چلے یہ کوئی خدا نہیں ہے. اللہ سے بھی اتنا نہیں دیتے جس سے کرتے. میں ایک ساتھ کہہ رہا ہوں فائدہ کیا بدمزگی ہوگی آٹھ دن تک, یہ نوبت ہی جو آئے کہ بدمزگی ہو بینک پہ خرچ کرنے کی, آٹھ دن تک دل کا موڈ ٹھیک نہیں رہے گا. یہ نوبت آئی کیوں, یہاں تک بات پہنچی کیوں کہ ماں کو دے رہے ہیں چھپ کے دے کے آ جاتے ہیں آٹھ دن, جیسے کوئی چوری کی. افضل تو ہے بھی نہیں کہ ہاتھ سے دلو, ذرے دین کے ہاتھ سے دلو, حق ہے ان کا بہن بھائیوں کا, میرے حق ہے. ایک بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو تین بہنیں دی ہوں اور وہ اس کی تربیت کرے, باپ اس قابل نہیں رہے ان کی تربیت کرے, اور بڑی ہو جائے تو ان کی شادیاں کرے, تو وہ ہمیں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے چار انگلیاں ملی ہوئی ہوتی. بہنوں کے بارے میں ہے, بیٹیوں کے بارے میں تو ہے ہی, بہنوں کے بارے میں جس طرح آج بیویوں کو سر چڑھایا کہ چار بہنوں کی شادیاں کرنے دیں گی, ان کی اسکول کی فیس بھی نہیں دینے دیتی. آئیے سب پڑھائے میں نے جس پر یہی داستان کی, روز بھگتنے کی چیزوں کا ایسے تھوڑی گئے. اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہنے جیسے چار کی ہیں چپکی نہیں ہیں تو بہنوں کا خرچ کر دیں, اور بہنوں کے خرچ کرنے والا ہمیشہ پل کا پوچھتا ہے جس کو جیتا ہے تجربہ کرتا ہے. ہمارے بزرگ ہیں بہت سخی, بہت سخی. میں نے اس دور میں جیسے سخی نہیں دیکھا. میں نے اس طریقے سے پوچھا کہ یہ اللہ نے آپ کو دولت کس وجہ سے دی, انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا بہنوں کا خوب خرچ کیا کرو, بہنوں کا خرچ کرنے والا پھلتا پھولتا ہے, میں کھل کے بہنوں کا خرچ کر سکتا, اللہ نے ساری برکت اس کی دی. اب ہم جتنے بیٹھے ہیں دیکھنے ہم اپنی بہنوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں, جتنے بیٹھے کتنا بہنوں کا خرچ کرتے ہیں. بہنوں سے خرچ کرنے والا ہمیشہ پھلے پھولے گا, یا تو بیویوں سے ڈر جاؤ یا بہنوں سے خرچ کر لو, ایک کام ہوگا. تو تیسرے نمبر پر خرچ پر رشتے داروں کا بتایا, اور پھر چوتھے نمبر پہ بتایا عام مومنین کا, اور پھر اس پہ یوں وسط کہی کہ دائیں بھی اور بائیں بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی جو ضرورت مند اس کا خرچ کر. یہ خرچ کی تقسیم بتائی ہے, ایک کمائی کی کا ترتیب, یہ ہے خرچ کی ترتیب. اب اس ترتیب پہ جو خرچ کرے گا برکت نفع دیں گے. جیسے میں نے اس طرح بیان کیا, ایک ہے اللہ کہا, ایک ہے اللہ کے رسول کہا, ایک ہے اس کے بندوں کہا. تو بندوں کے حقوق کی طرف سے عمومی طور پہ آپ سے بند ہو رہی ہے ایک بنیاد ہے. اب اس وقت یہ سارا مجمع میں بیٹھے اپنے بارے میں پڑھ لیں کہ ہم کہیں یہاں کی کسی ذوق میں ہم طرح تو نہیں ہیں. ترتیب سے کہے گا کہ ان شاء اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا اور بظاہر اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس سے وہ جنت میں جا سکے. ایک امتی کو لایا جائے گا لیکن بظاہر اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے جنت میں جا سکے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جنت میں داخل کر دو, یہ اپنے اہل عیال پر خرچ کرتا ہے. اور کوئی اس کے علاوہ عمل ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جس سے جنت کے داخلے کی کوئی امید ہوتی, تو فرشتے تو پھر دوسرے दूसरी तरफ ले जाने के लिए होते। अल्लाह पाक कहेंगे कि इसे जन्नत में दाखिल कर दो, इसलिए कि अपने अहलो अयाल पे खर्च कर सकते, उन पर तंगी नहीं कर सकते। दरअसल करो खर्च की तरतीब सारी यही रखनी पड़ेगी, सब अहल वाले में खर्च क्या रहेगा, सारा उनका करके और आप हाथ में फिर। और ये तो आपने बारह फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिसको तीन बेटियां दी हो और उनकी सही तरबियत करे और फिर उनकी शादियां करे तो जन्नत उसके लिए वाद करे, कि मुझे उसके लिए दो हो तो आपने फरमाया उसके लिए। एक रवायत पहले का फरमाया जिसकी तीन बेटियां हों और वो उनकी सही तरबियत करे उसको बोझ ना समझे, बोझ ना समझे, लड़कियों को बोझ ना समझे, और उनकी शादियां करे तो वो जन्नत में, यदि किसकी दो बेटियां हो तो फरमाया उसके लिए, तो मुझे अगर किसकी एक ही बेटी हो फरमाया उसके लिए। अल्लाह, बेटियों को लोग बोझ समझते हैं, हालांकि ये तो बहुत बड़ी नेमत है। और फरमाया जब किसी की बच्ची पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तो अल्लाह पाक एक फरिश्ते को भेजते हैं जो इनके लिए बरकत की दुआ करता है। बेटे के लिए नहीं है, उसके घर बेटी पैदा हो। अल्लाह जब किसी को बेटी देते हैं तो सात फरिश्ते को भेजते हैं जो इनके लिए बरकत की दुआ करता है। अल्लाह, और अल्लामा कत्तब रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है कि हजरत वात्रा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि औरत के लिए बायस से बरकत यह है कि वो पहले लड़की को जने, ठीक है, या अल्लाह पाक ने लड़कियों के पहले फजाइल बयान किए लड़कों के बाद में, तो उस आयत से इन्होंने ये बात निकाली कि वो औरत ज्यादा बरकत वाली है जो पहली बच्ची जने। हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली बेटी हुई है, सुन्नत है तो मुंह क्यों लटकाते हैं बेटी के होने पे, जब गुड़दम करवाने आते हैं उससे विलादत के लिए, अगर फौरन फोन आ जाए तो समझो बेटा हुआ है, और फोन ना आए दो तीन दिन तक तो उसमें ज्यादा बेटी हुई है, मुझे बराबर मैंने क्या हुआ, अरे बेटी हुई। ये तो दीनदारों का है, और अगर नर्स ने खबर दी कि बेटा हुआ है गौर से फूल हजरत मुबारक को बेटा हुआ, और बेटी के तीन दिन तक भी सांस नहीं लेते तो मुलाकात और पूछने में बताते कि बेटी हुई है। तो रोज का हमारे सामने बात मामला है कि नई चीज तोड़ के एक भी पीछे दुर्गा कह रहे ठीक है अल्लाह का शुक्र है ख्वाहिश तो यही थी कि बेटा होता, बेटा क्या सोने के चप्पियां थैली के साथ लेके आता है, अगर लड़कियों के फजाइल सुने ना जो पूरा बाप है इमाम गज़ाली ने लिखा है तो आदमी तमन्ना करे कि अल्लाह मेरी बेटी है बेटी पर एक सबकी बात है ना तो उल्टा मामला है, वो मेरा भतीजा हिमाचल उसके बच्चे बड़े हो गए वो पैदा हुआ तो मैं अजान देने का नहीं है, तो बराबर कमरे में भी बच्चियां बच्ची पैदा हुई थी तो मैंने मुबारकी दे दी, वो ऐसे नाराज हुआ था अल्लाह तुम्हें भी बेटियां ही बेटियां दे जैसे मैंने कोई ताना दे दिया हो। पीर कॉलोनी में साहब अस्पताल नहीं अफलाकर नहीं बराबर के कमरे में उनकी भी बच्ची हुई है, मैंने उनको मुबारकी दे दी, मैंने कहा मुबारक है, ऐसा गुस्सा जैसे गाली दे दी कि अल्लाह आपके भी बेटियां ही बेटियां है। तो मेरे भाई मतलब हुकूक पे चल रहा था कि ऐसी हुकूक में पड़ोसी जिनका सबसे ज्यादा हक है उनके बारे में भी बहुत ही ज्यादा कोताही चल पड़ी, यानी अल्लाह पाक ने वालदैन के हक के बाद जो बड़ा हक बताया है वो पड़ोसी का, पड़ोसी यानी इससे ज्यादा क्या होगा जो पेट भर के खाना खा ले और उसके पड़ोसी ने रात भूख से गुजारी तो उसको जन्नत की खुशबू भी है। और एक मरतबा किसी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने जहां मकान लिया है वो पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो आपने सहाबा की एक जमात भेजी जिसमें गालिबन सैयद अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली, इस तरह के जो सहाबा थे, ये हजरात क्या गए और इन सहाबी के मकान के दरवाजे पर खड़े होके जोर से आवाज लगाई कि सुन लो कि पड़ोसी जो है 40 घर तक है, पड़ोसी 40 घर तक है, और जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए उसका ठिकाना है दूसरा। 40 घर तक पड़ो, ये ऐलान किया उनके दरवाजे पर खड़े होके कि सुन लो पड़ोस 40 घर तक। अब हम देख लें अपने पड़ोस के बारे में कि हमें कितने घरों का हाल, शायद नेक्स्ट डोर का हाल भी मुश्किल से पता हो। बड़ी आबादी वाला नहीं है, उधर कर दिया कि क्या करें, इतने बड़े बड़े मकान हैं, वो तो कभी दूर से सलाम हो जाता है, तारों पे नहीं है। फ्लैट वाला ने यह कह दिया कि मजबूरियत की जिंदगी इतनी है कि पता नहीं चलता बराबर में कौन रह रहा है, अब क्या बनेगा मसला। अल्लाह के ये दोनों जवाब चल जाएंगे, डिफेंस और केडीए वालों के ये जवाब चल जाएंगे, अल्लाह के बकरिया कहते हैं बकरिया। मैंने पूछा एक बच्चे से, बेटा ये पड़ोसी कब से, 10-12 साल से है। मैंने कहा जानते हो, मेरे पास अगर दूर से गाड़ी में बैठते हो कभी सलाम हो जाता है। अच्छा जी, क्या बनेगा आखिर में, सब पढ़ने अपने आप को पूछते हैं कि क्या है अपने पड़ोस में कितनों का तारों है, तारों से मराजी उस पर क्या बीत रही है, ये तारों अब्दुल करीम है, ये तारों नहीं है, मतलब बोर्ड पे लिखता सारा दिन पढ़ते आते जाते चिड़ियों में चढ़ते, क्या बीत रही है उनसे, क्या उनके हालात है। फैशन के जुमले बन गए, जैसे यूरोप वाले कहते हैं क्या करें, ऐसी बिजी लाइफ है कि नेक्स्ट डोर का पता नहीं क्या हो रहा है। ये फैशन का जुमला नहीं, ये मायूस जुमला, शर्म का जुमला। हमें तो 40 घरों तक के हाल को पता करने का कहा गया, वो कहते नेक्स्ट डोर का पता नहीं। तो पड़ोसियों के बारे में भी गौर करें, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन इतने ज्यादा एहसाम लेकर आते हैं पड़ोसियों के, मुझे गुमान हो रहा है कि इनके भी विरासत में हिस्सा ना हो जाए। और एक जगह आयशा रजी अल्लाह ने इरशाद फरमाती है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीजें घर की आबादी और उम्र में ज्यादती का सबब है। ये दो ही मसले चल रहे हैं ना इस वक्त हमारे यहाँ, घर की वीरानी से मुराद क्या है, घर में कोई नहीं है वीरानी, 10 साथी है लेकिन 10 के साथ झगड़े आ दिल फटे हुए, सास की बहू से नहीं बन रही, बहू की सास से नहीं बन रही, देवरानी की जेठानी से नहीं बन रही, जेठानी की देवरानी से नहीं बन रही, एक घर में रहते हुए महीनों के बोलचाल बंद है। अपने बहन भाइयों की भी नहीं बनती, मियाँ बीवी की भी नहीं बनती, तलाकों पर तलाक, तलाकों पर तलाक, ये घर की बिरानी है, घर की आबादी नहीं है। और घर की आबादी खुशियां, मोहब्बत, उल्फत, एक दूसरे पर फिदा होना, एक दूसरे बगैर खाना नहीं खाना, ये है घर की आबादी। चाय दाल रोटी, चाय दाल रोटी, अगर टेबल पे खाना पड़ा है, एक ने आके अपने निकाल के खा लिया, दूसरे अपने खाया, आखिर मकान काम उठा के ले गया, ये घर की वीरानी, घर वीरान, जो आज बड़ाई की चीज है ना कि खानदान ने टेबल पे लगा दिया, एक आके खा के चला गया, दूसरा आके चला गया, तीसरा चला गया, आखिर मकान काम उठा के, ये घर आबाद है, फिर तो घर वीरान है। वो घर ही क्या जिसके घर वाले इकट्ठे बैठ के खाना खाए, वो घर ही, ये मोहब्बतों की दलील है, मोहब्बतों की दलील। और डाका डाला गैरों की मार करते हैं, जो इस मजमे में 60-70 साल से बड़ी उम्र के बैठे हैं, उन्हें याद होगा कि पहले घरों में बहुत से खाने बड़े हो, खा के सारे घर वाले खाना खाते थे और माँ गरम गरम रोटी समय पकाती रहती, मोहब्बत को लाइए जाए नीचे में ला के तो दिखाया, मुझे कोई ला के तो दिखाया जगह नहीं होती तो घुस घुस के बैठते, घुस घुस के बैठते लाई उस मोहब्बत को डाली इस किचन में, जो बंदे सबके घरों में डाली किचन में, जिनके तरीकों को लाएंगे वो तो जिंदगी में उतरेंगे। जब अपनी माँ इज्जत की, अपनी मोहब्बत की, लहरों के तरीके हमारे बहुत से खाने में और डाइनिंग रूम में आए तो हमारे भी दिल फट गया। आपस बहन भाई एक दूसरे की प्लेट पे खाने को तैयार नहीं है, सोमवार सोमवार एक दूसरे के गिलास में पानी नहीं पीते बहन भाई, ऐसी गैरों की ऐसी मार्च में आ गई। सारे घर में एक गिलास एक कटर हो सका है बहन भाइयों के ऊपर, और एक बर्तन में खाते हैं। मोहब्बतों को तोड़ा गैरों के तरीकों ने और वापस काम के आयशा रजी अल्लाह को इरशाद फरमाती है कि तीन चीजें हैं जो घर की आबादी और उम्र की दराजी का जरिया है, अगर चाहते हैं तो बता देता हूं। दो ही बच्चे इस पर चल रहे हैं, एक उम्र का मसला कि बीमारी में ऐसा गहरा कि ना 40 साल वाले का बच्चा, 30 साल वाले का बच्चा, 25 साल वाले का बच्चा, दराजी उम्र की दुआ हुजूर अलैहि सलाम ने मांगी है कि अल्लाह मुझे और रजब और शाबान का महीना नसीब फरमा और मेरी उम्र में इतनी बरकत दे कि मैं रमजान तक पहुंच गया। यानी दराजी उम्र की दुआ मांगना सुन्नत है ताकि खैर के काम कर सकूं। तो दो तीन तीन अमल है जिसमें दराजी उम्र और घर की आबादी, उसमें पहली चीज तो यह है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव, पहली चीज है पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव, दराजी उम्र भी और दूसरी चीज घर में घर पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव। पड़ोसियों इतने अहकाम हैं पड़ोसियों के, आदमी पढ़ के बाद का दिमाग सुन जाता है कि अल्लाह क्या जवाब दे रहा था, हमें तो पता नहीं चलता कि पड़ोसी पे बीत क्या गई। वो आज लेके अस्पताल में इंतकाल होकर जनाजा आ गया, जब बाहर गाड़ियां खड़ी देखते हैं तो सब कहते हैं क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो क्या क्या हो। आज इनके अस्पताल में था और पड़ोसी को पता नहीं, बिल्कुल सात दीवार वाले का पता नहीं होता था, तीन चार मकान वालों का क्या पता होता। यह किस लिए दुख की बात, किस लिए दुख की बात। तो पहली चीज है पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव और दूसरी चीज है रिश्तों का जोड़ना, रिश्तों का जोड़ जो आज तोड़ने में महारत हासिल कर दी है लोगों ने, जरा बात सही कथा था जरा बात सही मिलना जुलना, रिश्तों का जोड़ना दूसरी चीज है, रिश्तों का जोड़ना। खानदान के खानदान टूटे पड़े हैं, सगे बहन भाई नहीं मिल रहे आपस, औलाद माँ बाप से नहीं मिल रही, क्या बताया और कुटिया खाना तो गए दूर। रिश्तों का जोड़ना, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई दाई दुनिया में आया है ना आएगा, मेरे महबूब से ज्यादा कोई दीन के लिए मशगूल दुनिया में आया है ना आएगा। मेरे महबूब अली सलाम भी वो बात जवाब थी, अपने खूबी के घर जाते थे, आपसे गए और दोपहर को वहां आराम करते हैं। यह है अपना ही रिश्तों का जोड़ना, कभी खाना क्या कभी कुपी वक्त से आप जाते और वहां आराम करते थोड़ी देर, तो आराम में यकीन खाते पीते भी होंगे। जाना जाए मिलता है हम जाते हैं, वो कहते हैं भाई तो सगी सूफी से मिले हुए 2 साल हो गए, ये भी बड़ा ही। वो कहते हैं भाई सगी खालिद से मिले हुए 1 साल। वो कहते हैं क्या करें, ऐसी मजबूरी है, जैसे आप खोखरा पार में रहते हैं इसलिए 1.5 साल से जाना ही हुआ। तो वो खबरा कराची में है या इंडिया में है, जाना है खोखरा पार, अहमदाबाद खोखरा पार से ही मलिर के पास है। रिश्तों का जोड़ना दूसरी चीज जो है नाराजगी और बरकत की, रिश्तों का जोड़ना। एक तो वैसे ही टूटे हुए लड़ाई हो रहे थे, लड़ाई सुनी रहे वैसे टूटे सारों हो गए मेरा पास। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, यह पूर्व कयामत की निशानियों में से है कि रिश्तेदारों से दूरी होगी और गैरों से पुरबत होगी। आज गैर तो बन गए अपने, अब ये जुमला भी कहते हैं कि आजकल तो रिश्तेदारों से गैर ही अच्छे, ये जुमला है। हम कहते हैं जुमला कि आजकल तो रिश्तेदारों से गैर अच्छे हैं। जब ये रिश्तेदारी पुकारेगी ना कयामत में, अल्लाह इसको जवाब देंगे कि पुकारेगी कि अल्लाह जिसने मुझे हमें जोड़ा तो उसे जोड़ और जिसने हमें जोड़ा तो उसे जोड़। ये रिश्तेदारी पुकारेगी, रिश्ते ऐसी थोड़ी है भाई। तो पहली चीज पड़ोसियों के हकूक, दूसरे रिश्तों का जोड़ना, रिश्तों का जोड़ना, और तीसरी चीज क्या है, अच्छे अपना, अच्छे अपना। ये 3 चीजें हैं अच्छे अपना। अब ये 3 चीजें आ गई, अच्छे अपना यानी मेरी जात से किसी को दुख ना पहुंचे, इससे बराबर किसी को मुझसे तकलीफ ना पहुंचे, किसी का दिल ना फटे मेरी बात। मैंने सारा किया कह रहा हूं तो मार दिया है। यह अखलाक ऐसी थी, हजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत के बारे में पूछा गया, असल एक औरत है दिन भर रोजा रखती है और रात भर इबादत करती है और खूब सस्ता फैराज है, उसके बारे में क्या हुक्म है? आप जो पूछे उसके अखलाक कैसे हैं, जैसे ऐसी बद मिजाज, ऐसी बद अखलाक कि आज की कतरा तला गुजरे और आपकी बात करते हो घबराए। आपने साथ फरमाई और जहन्नुमी, ये किसको कह रहे जहन्नुमी? दिन भर रोजा रखने वाली, रात भर इबादत करने वाली, लेकिन जबान के जंग से लोगों को परेशान किया। बात हमारी भी होते हैं ना, अल्लाह माफ फरमाए, बच्चे उनसे घबराते हैं, डांटते रहेंगे सबको में इधर उधर सबको, भाई ऐसी नमाज या क्यों नियत मानती, वहां यू क्यों कर लिया, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, बच्चे बेचारे डरते हैं उनसे। अखलाक क्या, आदमी दूर से खींचा चला है, दूर से खींचा चला है, खुद बखुद अंदर से तबीयत क्या है मुसाफा करने की, अंदर से जोश उसे सलाम करने के लिए, आज ही फरज के वापस आए सलाम करने के लिए, ऐसे कहीं जहन्नुमी। और एक औरत के बारे में मुझे असल एक औरत है, फराइज और वाजिबात को अदा करती, सरब पे चौड़े नवाब पे, सरब पे चौड़े रोज अपनी रोजे मैं फर्ज रोजे रखती है और फराइज और वाजिबात सुन्नत के अहतमाम, क्या उसके अखलाक कहते हैं? ऐसी मीठी जबान कि एक दफा बात कर ले तो दोबारा मिलने को चाहे, खानदान में कुछ पड़ोसी में कुछ घर वाले आप निशा सुनाए, ये औरत जन्नती है। लंबी चौड़ी तस्वीर ही पड़ती थी, आधी रात की तहज्जुद की पड़ती थी, तो फिर जमेरात 11-20 के रोजे नहीं रखती थी। माफ ना, माफ ना। तो ये 3 चीजें हैं, घर में परवानी और उम्र में ज्यादती की चीजें, रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के साथ जोड़ रिश्ते, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तों का जोड़ना, जोड़ने का रास्ता है रिश्तों का जोड़ना, जिसके टूट गए वो भी जोड़े और जो बाहर छोड़े हो खुद पसंद अलग हुए वो भी जोड़े। मैंने सुबह की मजलिस में बेहतरीन मौका है कि जिस जिसके टूटे हुए ना आम की पेटियां ले जाओ सकते, यह आम ऐसा जोड़ने वाला फल है कि सबके दिलों को जोड़ सकते। मैं सुबह से कह रहा हूँ आपसे जी चाहता है कि तबलीग की तरह हर अमल की तश्कील करनी चाहिए कि बताओ कौन तैयार है, जैसे कि सुन के जहाँ के चले जाए तो बात सुनने के तुम वैसी आदि हो गए, जहाँ खड़े तो वहीं के वहीं खड़े हुए। अगर भाई अमल करना है तो आप सोचिए कि इन सब चीज़ों के बारे में जो दो चीज़ें कहीं अहम ख्याल रिश्तेदार पड़ोसी, अब इनके बारे में क्या करना है आज। आदमी के पास है कोई ऐसे इस पर गौर नहीं, हमारे भाई फारूक आने वाले मरहूम रहमतुल्लाह सही आदमी थे माशाल्लाह, और काम ही उनका जंगलात का ये था, लेकिन सब तरफ नजर रख के चलते थे। असर में मक्की मस्जिद पहुंच जाना शबे जुमा में और इशराफ तक बयान तक वहां ठहरना, और फिर इशराफ के बाद कभी किसी जुमे को चेचा के घर होते हुए आ गए, किसी जुमे को खाला के घर होते हुए आ गए, किसी जुमे को खुबी के घर होते हुए आ गए, किसी घर किसी और जाकर, और ये कहते हैं मैं नाश्ता करने आ रहा हूँ, वो कुछ भी जाते कि भाजे नाश्ता करते हैं आधा पौना घंटे बैठे हो गए रिश्तेदारियाँ छोड़ गई, जब उनके आगे से तबलीग से तबलीग से आगे सुबह कुछ काम ही नहीं था तो कौन कहते हो आपने, हम घर ये देखिए घर जाके सोएंगे। एक तो सोने ने हमारा नुकसान पहुंचा, सोना हमें कुछ करने नहीं कि शबी जुमा से आके जो फोड़ के सोते तो जुमा भी देखते कि ढाई बजे कहाँ हो रहा है पौने तीन बजे कहाँ हो रहा है, तो करने वाले थे इसमें सिलवटों में वक्त निकाल लेते, और जिसको नहीं करना उसके बाद बहुत बहाने हैं कि भाई मजबूरियत बहुत, तो कर लेंगे ये सारी चीजें पहुंचाएंगे आपकी पेटियां। अल्लाह हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के हर अमल का इत्तेबा नसीब फरमा दे। दीन इसी को कहते हैं मामलात माशरत इन सब पे चौतरफा निगाह हो, फिर इबादात जो है निजात का जरिया बने। इबादात है शर्त, खाली हुकूक इबाद चलेगा इबादात ना हो तब भी कुछ नहीं मिलेगा, मालूम ये भी जोर हो गया है जरा नमाज की परवाह जिक्र कराओ तो हुकूक इबाद चलेगे नहीं, ये भी नहीं है। अल्लाह का हक अदा करते हुए अल्लाह के बंदों का हक अदा, अल्लाह صلى الله عليه وسلم على المؤمنين.